लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव से उपजी स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक आपात स्थिति की बैठक बुलाई जाने की घोषणा की है। मंकी पॉक्स के मामलों में उन 32 देशों में भी पुष्टि हुई है जहां आमतौर पर इसके संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक ने मंगलवार को बताया कि 23 जून को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक का उद्देश्य यह तय करना है कि मंकीपॉक्स के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में यह सबसे ऊंचे स्तर का वैश्विक अलर्ट है, जो कि फिलहाल COVID-19 महामारी और पोलियो के लिए ही लागू है। इस वर्ष अभी तक 39 देशों में मंकीपॉक्स के संक्रमण के 1,600 से अधिक पुष्ट मामलों और करीब 1,500 संदिग्ध मामलों का पता चल चुका है। महानिदेशक घेब्रेयेसस ने बताया कि COVID-19 महामारी के संक्रमण मामले व मृतक संख्या पिछले वर्ष बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे, मगर अब उनमें 90% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य रुझान है। फिर भी पिछले सप्ताह WHO को 30 लाख से अधिक मामलों का पता चला। चूंकि अनेक देशों ने अपनी निगरानी व परीक्षा में कमी की है, अतः यह संख्या असल में कम है। इस अवधि में 8,737 लोगों की मौत हो गई, जिसे उन्हें अस्वीकार्य बतलाया। चूंकि अब COVID-19 की रोकथाम करने, पता लगाने और उपचार करने के लिए उपाय उपलब्ध हैं, एजेंसी के महानिदेशक ने देशों से COVID-19 वैक्सीन, उपचार और निदान परीक्षण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में अस्थायी छूट देने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के देशों को एक वर्ष खाद्य आयात पर $1.8 ट्रिलियन की रकम खर्च करने का अनुमान है, जो कि एक नया रिकॉर्ड होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन की 9 जून को जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों के लिए तो ये स्थिति बढ़ती कीमतों का बोझ वहन करने की उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाने का संकेत है। साथ ही UN महासचिव ने आगाह किया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण जीवन यापन के लिए कीमतों का उछाल आया है, इससे कोई भी देश या समुदाय अछूता नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
UN एजेंसी ने अपनी नवीनतम खाद्य परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के आयात पर जो अतिरिक्त $51 अरब की रकम खर्च होगी, उसमें से करीब $49 अरब की रकम बढ़ी हुई कीमतों के कारण खर्च होगी। महासचिव गुटेरेश ने यूक्रेन में संकट से वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा व वित्त पोषण के लिए उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित एक नवीनतम रिपोर्ट बुधवार को जारी की। UN प्रमुख ने यह रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर कहा,
इन रियलिटी देयर इज ओनली वन वे टू स्टॉप दिस गैदरिंग स्टॉर्म इन इट्स ट्रैक्स, द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन मस्ट एंड।
एंटोनियो गुटेरेश कह रही थी कि वास्तविकता में केवल एक तरीका है इस बढ़ते तूफान और इसके खतरों को रोकने का, और वो है यूक्रेन पर रूसी हमले का तुरंत खात्मा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें दुनिया भर में बढ़ती खाद्य व ऊर्जा कीमतों में स्थिरता लानी होगी और विकासशील देशों के लिए कुछ राहत उत्पन्न करनी होगी। यूक्रेन का खाद्य उत्पादन और रूस के खाद्य व उर्वरक उत्पाद युद्ध के बावजूद फिर से बाजारों में लाने होंगे। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। वैश्विक संकट जवाबी कार्रवाई समूह की रिपोर्ट के अनुसार 94 देशों में कम से कम 1,60,00,000,000 लोग यूक्रेन में संकट के कम से कम एक पहलू से प्रभावित हुए हैं। 1,20,00,000,000 लोग उन देशों में रहते हैं जिन पर गंभीर प्रभाव होने का जोखिम है।
श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और साझेदार संगठनों ने देश में आर्थिक संकट के कारण उपजी मानवीय राहत आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में गुरुवार को एक साझा योजना पेश की, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित 17 लाख लोगों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए 4,72,00,000 डॉलर की धनराशि जुटाने की पुकार लगाई गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
इस रकम के जरिए इस साल जून से सितंबर तक 4 महीनों के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की योजना है। इससे पहले श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय सहायता का निवेदन किया था, ताकि हाल के दिनों में देश में संकट की वजह से उपजी राहत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस क्रम में स्वास्थ्य देखभाल, अति आवश्यक दवाओं, भोजन, कृषि, सुरक्षित पेयजल, आपात आजीविका व संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना होगा। गुरुवार को जो योजना प्रस्तुत की गई है उनमें उन 17 लाख लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है जिनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता पर सबसे अधिक जोखिम है और जिन्हें तत्काल समर्थन की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र सभा ने हंगरी के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ साबा कोरोसी को आगामी 77वें सत्र के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। ये चुनाव न्यूयॉर्क के यूएन मुख्यालय में मंगलवार 7 जून को आधिकारिक समारोह के दौरान संपन्न हुआ। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए 5 नए देश निर्वाचित हुए हैं। यूएन महासभा में गुरुवार को मतदान के जरिए इन देशों का चुनाव हुआ। ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
राजदूत कसाबा कारोसी हंगरी के राष्ट्रपति कार्यालय में पर्यावरणीय सततता के निदेशक हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श व नीति निर्माता संस्था महासभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सितंबर 2022 में एक साल के लिए शुरू करेंगे। नए अध्यक्ष ने एकजुटता, सततता व विज्ञान के माध्यम से समाधान तलाश करने की मंशा प्रकट की है और यही 3 वाक्य यूएन महासभा के 77वें सत्र के दिग्दर्शक भी होंगे। इस बीच यूएन महासभा में गुरुवार को मतदान के जरिए सुरक्षा परिषद के जिन 5 नए सदस्यों का चुनाव हुआ है उनके नाम हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। नव निर्वाचित देश अगले साल जनवरी में 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं।
भारत के चंडीगढ़ में पुलिस सेवा में कार्यरत इंस्पेक्टर परमजीत कौर शेखो, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 19 में शांति रक्षक के रूप में सेवा दे रही हैं। यूएन की अंशु शर्मा की इंस्पेक्टर परमजीत कौर के साथ हुई बातचीत का कुछ अंश।
तो शांति रक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, अपने सफर के बारे में हमें कुछ बताइए।
मैं इंडिया में इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ और चंडीगढ़ पुलिस में हूँ। मेरे बहुत सारे साथी जब मिशन में गए आके उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पे हमें इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। हम दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के पुलिस के लोगों से और उनकी पुलिस में कैसा काम होता है वो जानकर आते थे। तो इस बात के लिए मुझे भी हुआ कि मुझे भी वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आके मिशन में काम कर रही हूँ।
हमें जानना चाहेंगे कि एक शांति रक्षक के रूप में आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या क्या रहती है।
हमारा जो यहाँ काम है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और पुलिस का काम तो 24/7 हर जगह ही चलता है। आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ, सिविलियन के साथ मैं काम करती हूँ। बाहर पब्लिक में हमने क्या क्या सेमिनार्स करने हैं, पब्लिक को कैसे समझाना है, जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग टीम है वो उनके साथ जाके काम करती है और उनको बताती है कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। सागर से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी ज्यादा दुलार तेरा। है कितना रहम दिल खुदा मेरा, है कितना रहम दिल खुदा मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तुझसा न कोई रहम दिल। भर दे तू दिल के जख्मों को सारे, तुझको खुदा है सलाम मेरा। उत्तर या दक्षिण, पूरब या पश्चिम, तुझसा न कोई रहम दिल। भर दे तू दिल के जख्मों को सारे, तुझको खुदा है सलाम मेरा।
सागर। आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को थाईलैंड के 33 प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। थाईलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल में थेरावाड़ा और महायाना पंथों के बौद्ध भिक्षुओं सहित 60 बौद्ध धर्मानुयायी तथा थाईलैंड कैथोलिक कलीसिया के अनेक प्रतिनिधि शामिल थे। बौद्ध प्रतिनिधिमंडल की वेटिकन यात्रा का उद्देश्य 5 जून 1972 को पूर्व संत पापा पॉल षष्ठम के साथ थाईलैंड के 17वें सर्वोच्च बौद्ध कुलपति परम आदरणीय सोमदेश फ्रा वन्नारत की ऐतिहासिक बैठक की स्वर्ण जयंती मनाना है। थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल को वेटिकन भेजने और मैत्री तथा परस्पर सहयोग के संबंधों को नवीकृत करने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने थाईलैंड के सर्वोच्च बौद्ध संघ के प्रमुख सोमदेज फ्राश्री आरिया वोंग सगतानन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। 50 वर्षों पूर्व संत पापा पॉल षष्ठम द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण कर संत पापा ने बौद्ध प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से कहा, आपकी बहुमूल्य परंपराओं के माध्यम से आपको प्रदत्त आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक खजाने के लिए हमारे मन में गहरा सम्मान है। हम उन मूल्यों को मान्यता देते हैं जिनके आप संरक्षक हैं, और हम इस इच्छा को साझा करते हैं कि उन्हें संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप जिन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैथोलिक कलीसिया की परंपराओं के बीच मैत्रीपूर्ण संवाद और घनिष्ठ सहयोग नित्य प्रति बढ़ता रहेगा। संत पापा ने कहा, इन 50 वर्षों के दौरान हमने अपनी दो धार्मिक परंपराओं के बीच मैत्रीपूर्ण संवाद और घनिष्ठ सहयोग का क्रमिक और स्थिर विकास देखा है, जो हमारे लिए संतोष का विषय है। 2018 में थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल की रोम भेंट और 2019 के नवंबर माह में स्वयं अपनी थाईलैंड प्रेरितिक यात्रा का संत पापा फ्रांसिस ने स्मरण किया तथा उस अवसर पर थाईलैंड के लोगों द्वारा किए गए स्वागत के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। थाईलैंड के कैथोलिक कलीसियाई समुदाय के साथ बौद्ध धर्मानुयायियों के अंतरधार्मिक रिश्तों और सहयोग को भी संत पापा ने सराहा। संत पापा ने कहा कि ऐसे समय में जब हमारा मानव परिवार और हमारी धरती कई तरह के खतरों का सामना कर रही है, इस तरह के मैत्रीपूर्ण संवाद और सहयोग की सभी को नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह और बुद्ध भगवान दोनों की शिक्षा यही रही कि बुराई से दूर रहो और आपस में प्रेम करो। अस्तु, आज हमारा दायित्व है कि हम अपने अपने धर्मों के अनुयायियों में प्रेम और मैत्री का प्रसार कर विश्व में न्याय और शांति की स्थापना में योगदान प्रदान करें। संत पापा फ्रांसिस के पीटर पेंस नामक विश्वव्यापी कल्याणकारी कोष ने 2021 में लोकोपकारी योजनाओं के लिए 1 करोड़ यूरो का वित्त पोषण किया। गुरुवार को वैटिकन द्वारा प्रकाशित वित्त रिपोर्ट में लगभग 4,70,00,000 के राजस्व का खुलासा किया गया, जबकि 6,53,00,000 खर्च किए गए। बताया गया कि विगत वर्ष कम से कम 67 जरूरतमंद देशों को मदद पहुंचाई गई। दानकर्ताओं में इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख रहे। पीटर पेंस नामक संत पापा के विश्वव्यापी कल्याणकारी कोष का लक्ष्य कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के सार्वभौमिक मिशन का वित्त पोषण करना तथा जरूरतमंदों की सहायता हेतु अनुदान देना है। इसके अंतर्गत परम धर्म पीठीय रोमी कार्यालयों का खर्च तथा विश्व भर में व्याप्त परम धर्म पीठीय राजनयिक मिशनों के खर्च के साथ साथ विभिन्न देशों में कल्याणकारी योजनाओं का खर्च आता है। वैटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार पश्चिमी बाल्कन के भविष्य पर चर्चा करने तथा स्कोपिये में ख्रीस्त्याग समारोह हेतु 16 से 19 जून तक उत्तरी मैसेडोनिया का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को वैटिकन सचिवालय ने ट्विटर पर प्रकाशित संदेश में महाधर्माध्यक्ष की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा की घोषणा की। पश्चिमी बाल्कन प्रदेश के ओरित शहर में 16 से 19 जून तक प्रेस्पा फोरम संवाद 2022 जारी है। इसी में भाग लेने हेतु महाधर्माध्यक्ष उत्तरी मैसेडोनिया का दौरा कर रहे हैं। 23 जून को ब्रसेल्स में होने वाली यूरोपीय संघ की एक उच्च स्तरीय बैठक से पहले उक्त कार्यक्रम में राजनीतिक नेता पश्चिमी बाल्कन के भविष्य पर चर्चा करेंगे तथा वर्तमान यूरोपीय सुरक्षा स्थिति संबंधी क्षेत्र के भविष्य पर भी विशद विचार विमर्श करेंगे। वैटिकन सचिवालय की वेबसाइट पर प्रकाशित ट्वीट के अनुसार महाधर्माध्यक्ष गालागार इस यात्रा के दौरान उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति स्टीवो पेंडरोव्स्की, प्रधानमंत्री दिमितार कोवाचेव्स्की तथा विदेश मंत्री बुजार उस्मानी से मुलाकातें करेंगे। भारत के कैथलिकों ने हाल ही में दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया में ईसाइयों की नृशंस सामूहिक हत्या पर वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर सवाल उठाया है तथा अत्याचारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है। पेंटेकोस्ट रविवार यानी 5 जून को इस्लामी चरमपंथी बंदूकचियों ने नाइजीरिया के ओंदो प्रांत के ओवो शहर स्थित संत फ्रांसिस जेवियर कैथलिक महागिरजाघर में प्रवेश कर अंधाधुंध गोलियां चलाई और विस्फोटक उड़ाए, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। केरल के कोट्टायम जिले में केरल स्थित कैथलिक कांग्रेस के सैकड़ों सदस्यों ने एक जुलूस निकाला तथा नरसंहार की कड़ी निंदा की। चेंगनासेरी महाधर्म प्रांत में कैथलिक कांग्रेस अध्यक्ष पीपी जोसेफ ने कहा, हम वैश्विक समुदाय से नाइजीरिया में सामूहिक हत्याओं के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा, जब तक इस तरह की हत्याओं के खिलाफ वैश्विक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक इस दुनिया में मानवता नहीं बचेगी। केरल की कैथलिक धर्माधीक्षीय समिति के प्रवक्ता फादर जेकब जी पल्लाका पिल्ली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अब तक 5 जून को नाइजीरिया में हुए ख्रिस्तियों के नरसंहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह के हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। इसी बीच सीरो मलाबार कलीसिया के धर्माधिपति कार्डिनल जॉर्ज आलनचेरी ने नाइजीरिया में ख्रिस्तियों की हत्या की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा, यह जानकर बहुत दुख होता है कि बहुत से बेगुनाहों को केवल ईसाई होने के कारण मार दिया जाता है। विश्व समुदाय से उन्होंने आग्रह किया कि वह इस मामले पर गंभीर रूप से विचार करे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।